नमस्कार दोस्तों, लीजिए हम फिर आ पहुंचे हैं आपका अपना पसंदीदा रेडियो प्रोग्राम नई दिशा लेकर। मैं हूं आपका दोस्त जगत चंदौली।
और मैं हूं प्रेमा नेगी। तो चलो जगत, शुरू करते हैं आज का अपना नई दिशा का सफर।
ये तो जाहिर सी बात है प्रेमा कि हम सफर शुरू करेंगे ही, मगर उससे पहले क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ?
पूछ सकता हूँ मतलब जगत, कार्यक्रम के दौरान पर्सनल बातें करना बिल्कुल मना है।
लेकिन सुनो तो सही, ये बात पर्सनल नहीं बल्कि सही कहूँ ना तो मैं तुमसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ।
ओके, मगर जल्दी बताओ क्या पूछना चाहते हो तुम।
प्रेमा मुझे ये बताओ कि क्या नई दिशा से जुड़ने से पहले भी तुम HIV के बारे में इतनी ही ज्यादा जागरूक थी?
बिल्कुल, मैंने स्वस्थ जीवन से जुड़ी हर बात पर शुरुआत से ही ध्यान दिया और उनके बारे में जानने की कोशिश भी की। लेकिन तुम क्यों ऐसा पूछ रहे हो, क्या तुम्हें HIV के बारे में पहले जानकारी नहीं थी?
नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जानकारी नहीं थी, मगर दोस्तों के अलावा मैं किसी और से इस बारे में बात नहीं किया करता था। लेकिन अब मैं पूरे विश्वास के साथ सभी के सामने इस बारे में जानकारी दे सकता हूँ और ले भी सकता हूँ।
तो सुना आपने दोस्तों, हमारे जगत जी के जीवन में नई दिशा से जुड़ने के बाद कितना परिवर्तन आ गया है। और आज के समय में ये जरूरी भी हो गया है कि हम अपने जीवन से जुड़ी बातों पर पूरा ध्यान दें और इनके बारे में जानकारी भी रखें।
और दोस्तों, आपके खतों और ईमेल द्वारा भेजे संदेशों से भी हमें ये लगता है कि आप भी अब HIV के प्रति जागरूकता दिखा रहे हैं।
और जगत, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये जरूरी भी है क्योंकि HIV से बचने का सबसे आसान उपाय है HIV के बारे में सही जानकारी और उस पर अमल। क्योंकि ज्यादातर यही बात सामने आती है कि HIV के बारे में जानकारी न होने से HIV के फैलने का अंदेशा तो हो ही जाता है, साथ ही इससे फैलती हैं HIV के बारे में भ्रांतियाँ भी।
बिल्कुल सही कहती हो प्रेमा, इसीलिए तो हम नई दिशा की शुरुआत जानकारी के पहले सेगमेंट जानो अनजाने से करते हैं।
तो देर किस बात की है जगत, आओ चलते हैं कार्यक्रम के पहले सेगमेंट जानो अनजाने में। दोस्तों, जानो अनजाने में आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ बातों की जो HIV फैलाने की वजह नहीं है, मगर कुछ लोग उन्हें इसका कारण मानते हैं। अब जैसे जगत का दोस्त मच्छर के काटने को भी HIV होने का कारण मानता था।
प्रेमा, ऐसे ही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चूमने से, मेरा मतलब है किसी को किस करने से भी HIV एड्स हो सकता है।
और ये बात भी पूरी तरह से गलत है। चूमने से या किस करने से या फिर गले मिलने से, यहाँ तक कि साथ खाना खाने, एक दूसरे का तौलिया इस्तेमाल करने से HIV का संक्रमण नहीं होता है।
प्रेमा, मुझे लगता है कि हम सभी को खुद ही इन सब बातों के प्रति जागरूक होना ही होगा, क्योंकि HIV फैलने का एक बहुत बड़ा कारण इसके खिलाफ फैली ये अफवाहें भी हैं।
सही कहते हो जगत, हमारे बीच से ही लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इसके बारे में भ्रांतियों को जन्म दे दिया है।
यानी वो जो करें वो ठीक, बाकी सब चीजें खतरनाक, और नतीजा ऐसे लोगों को ही इसका खतरा ज्यादा रहता है।
यानी जिसने भी इस बारे में अधूरा ज्ञान रखा उसके लिए खतरे की संभावना ज्यादा रही।
और दोस्तों, एक खास बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि कुछ दोस्त हस्त मैथुन करने को भी HIV फैलने का एक कारण समझते हैं, मगर हम आपको फिर सावधान कर दें कि ये भी HIV संक्रमण का कारण बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप सही जानकारी रखिए और HIV से दूर रहिए।
और सही जानकारी देने के लिए हम हैं आपके साथ नई दिशा लेकर।
इसके साथ साथ सही जानकारी लेकर आप HIV से तो बच ही सकते हैं और साथ ही साथ हर हफ्ते जीत सकते हैं एक आकर्षक पुरस्कार भी,
यानी कि एक मस्त भेजा फ्राई कैप आसान से सवाल का जवाब देकर।
तो चलिए ले चलते हैं आपको कार्यक्रम के दूसरे सेगमेंट भेजा फ्राई की ओर।
दोस्तों, पिछले हफ्ते का हमारा भेजा फ्राई सवाल था HIV जांच के लिए शरीर में खून का कौन सा टेस्ट किया जाता है, और सही जवाब है ऑप्शन ए, एलिजा एंड वेस्टर्न ब्लॉड ब्लड टेस्ट। और एपिसोड 8 के विजेता है सपना उत्तराखंड से।
आपको नई दिशा की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अब बारी है आज के भेजा फ्राई सवाल की। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए सवाल और दीजिए इसका आसान सा जवाब।
और आज का सवाल है कि एड्स का पूरा नाम यानी कि AIDS अक्षर का फुल फॉर्म क्या होता है। सवाल एक बार फिर से सुनिए, एड्स का पूरा नाम यानी कि AIDS अक्षरों का फुल फॉर्म क्या होता है। और सही जवाब देने के लिए आपके ऑप्शन हैं ए, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बी, ह्यूमन इम्यून वायरस, सी, ऑल इंडिया डिफेंस सर्विस, और डी, ऑल इंडिया डेवलपमेंट सर्विस। अपने ऑप्शंस एक बार फिर से सुनिए, ए, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बी, ह्यूमन इम्यून वायरस, सी, ऑल इंडिया डिफेंस सर्विस, और डी, ऑल इंडिया डेवलपमेंट सर्विस।
दोस्तों, यदि आप ही जीतना चाहते हैं एक मस्त भेजा फ्राई कैप, तो अपने मोबाइल पर टाइप कीजिए ND13 भेजा फ्राई स्पेस आपका ऑप्शन ABCD और भेज दें इसे 9717678223 पर। किसी से दिल लगाना, किसी से दिल छुड़ाना, किसी पे दिल से सदके, किसी को आजमाना, किसी की नींद लेना, किसी को ख्वाब देना, किसी का दिल सजाना, किसी को रात देना, आदत है ये एक आदत। और अब समय है कार्यक्रम के अगले सेगमेंट आमने सामने का।
दोस्तों, आमने सामने में हमारी आज की मेहमान हैं अनुराधा मुखर्जी, जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं नाज फाउंडेशन की।
स्वागत है आपका नई दिशा में।
अनुराधा जी, हमारा सबसे पहला सवाल है, युवाओं को मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत कब होती है?
अगर हम HIV की बात करते हैं तो युवा पीढ़ी को इस दौरान बहुत जरूरी है कि उनको सही मार्गदर्शन मिले। हम देखते हैं कि जब HIV की बात आती है तो कहीं पर इसका शारीरिक संबंधों की भी बात आती है, तो इसलिए चाहे वो घर में माँ बाप हो या स्कूल में जो अध्यापक हैं, वो लोग इस बात के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते हैं और युवा नहीं जानते हैं कि कहाँ जाए। हालांकि इंटरनेट है या टेलीविजन है, अलग अलग माध्यम है, बट सही जानकारी लेने के लिए वो किस तरफ जाए वो उन्हें नहीं मालूम है।
अच्छा, आम तौर पर युवा कैसे सवाल करते हैं?
जब हम स्कूलों में जाते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें अध्यापक कह देते हैं कि आप इनको सेक्स के बारे में मत बताइए, कॉन्डोम्स के बारे में बात मत करिए। तो हम लोग चर्चा रखते हैं आधे घंटे का, 45 मिनट का, और फिर युवाओं से कहते हैं कि उनके सवाल हमें दें। खासतौर से हम कहते हैं कि आप लिख के दीजिए, क्योंकि कई बार आप एक कक्षा में खड़े होकर इस तरह के सवाल नहीं पूछ पाते हैं। तो तब हम देखते हैं कि युवाओं में कितना क्यूरियोसिटी है, कितनी जिज्ञासा है। वो लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से HIV का प्रचार हो रहा है, स्पेशली जब हम सेक्स की बात करते हैं और शारीरिक संबंधों की बात करते हैं, तो काफी ऐसे सवाल उनके मन में आते हैं। और जैसे हमने एक जगह एक स्कूल में गए तो वहां पर हमें ये बताया गया, ज्यादातर जो युवा पीढ़ी के लोगों के सवाल थे उसमें ये था कि अगर आपका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो आपको HIV हो जाता है। कैसे होता है ये किसी को नहीं मालूम। शायद अध्यापक यही बताना चाह रहे होंगे कि आप अभी इस दौरान युवा पीढ़ी के दौरान अपने शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दें और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ना बनाएं। बट मैसेज इस तरह से जाता है कि अगर आपका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो आपको HIV हो जाएगी। तो इस तरह के सवाल हमारे पास आते रहते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि हम युवा पीढ़ी के साथ काम कर रहे हैं तो युवा को ही ट्रेन करते हैं ताकि वो आगे जाकर ट्रेनिंग दे सके। इसके अलावा हमारे पास सवाल आते हैं कि किस तरह के एक्सप्लोरेशन करते हैं, किस तरह आप अगर किसी सेक्स वर्कर के पास जाना चाहते हैं, किस तरह के इंटरनेट पे साइट्स हैं, वेबसाइट्स, वहां पर आप क्या देख सकते हैं। तो इस तरह के काफी युवाओं से सवाल आ रहे हैं और हम देखते हैं कि काफी कम उम्र के बच्चे भी इस तरह के सवाल आज उठा रहे हैं।
तो युवाओं को किस प्रकार के सामाजिक और पारिवारिक सहयोग की जरूरत है?
युवा पीढ़ी ऐसी एक अवस्था है जहाँ पर बहुत ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत है, और अगर हम खुलकर इन चीजों पे बातचीत करें, चाहे वो घर पे ही माँ बाप ही हो, और शायद हमें एक्सेप्टेंस की बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को कई बार लगता है कि ठीक है अपने पियर एज जो लोग हैं, दोस्त हैं, उनके साथ तो हम बात कर सकते हैं, बट माँ बाप के साथ नहीं बात कर सकते हैं। और इससे कई बार ये होती है कि जानकारी सही से नहीं मिल पाती है और उसकी वजह से HIV के होने के चांसेस और खतरे काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो अगर खुलकर बात होगी तो डेफिनेटली इसमें काफी बदलाव आएगा।
अनुराधा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रोताओ, हम तो अपनी कह चुके और अब बारी है आपकी, यानी आपकी बात की।
चिट्ठी आई है चिट्ठी।
और आज आपकी बात में हम किस जागरूक श्रोता का संदेश पढ़ने जा रहे हैं जगत?
प्रेमा, आज आपकी बात में हमें खत भेजा है अमित जी ने दिल्ली से। ये पूछते हैं कि क्या समलैंगिक संबंध बनाने से भी HIV हो सकता है? अमित जी, कोई भी यौन संबंध, चाहे वो समलैंगिक हो या पुरुष और महिला के बीच हो, अगर कॉन्डोम के इस्तेमाल के बिना हुआ है तो उसमें HIV होने की संभावना होती है। तो आपके सवाल का जवाब हुआ हाँ, समलैंगिक संभोग में कॉन्डोम का प्रयोग का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो HIV होने का बहुत ज्यादा खतरा है।
दोस्तों, आपके मन में भी यदि कोई सवाल HIV या एड्स के बारे में उठ रहा है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। हम आपको देंगे आपके सवाल के बारे में सही और जानकारी भरा जवाब।
और यदि आप हमारे कार्यक्रम के बारे में अपनी राय या सुझाव हमें देना चाहते हैं तो उसका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आखिर नई दिशा कार्यक्रम आपका अपना ही तो है।
अपने सवाल या शंकाएं
या अपनी राय या सुझाव
आप हमें भेज सकते हैं अपने खतों के माध्यम से। खत लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम नई दिशा, 170 बेसमेंट अशोका इंक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा।
इसके अलावा यदि आप चाहें तो अपने सवाल या सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ईमेल भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, नई दिशा NAYEDISHAA@gmail.com।
क्या जयपाल HIV पॉजिटिव होने के बाद दोबारा अपने टैक्सी स्टैंड में नौकरी कर पाएगा? सुमन और मोहित की प्रेम कहानी में अभी कितने मोड़ आने बाकी हैं? प्रधान अपने पैसे वापस लेने के लिए क्या तरीका अपनाएगा? हम जानते हैं दोस्तों, ऐसे कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, तो चलिए बिना देरी किए ले चलते हैं आपको वहाँ जहाँ इन सवालों के जवाब है,
यानी हमारे रेडियो धारावाहिक जीवन की राह की ओर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि जयपाल के HIV पॉजिटिव होने की बात को लेकर उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। उदास और परेशान जयपाल को सूरज सिंह हिम्मत देता है। उधर गांव में प्रधान लक्ष्मी के घर आकर उससे पैसे वापस मांगता है। लक्ष्मी उसे त्योहार पर जयपाल के घर आने पर पैसे वापस देने की बात कहकर वापस भेज देती है, मगर प्रधान उसे धमकी देकर जाता है कि अब की बार वो हर हाल में अपना पैसा वापस लेकर ही जाएगा।
उधर शहर में प्रधान का बेटा विनोद रात को देर से अपने हॉस्टल में आता है। वार्डन के रोकने पर वो से लड़ बैठता है। इसी बीच उसकी जेब से एक सिरिंज गिर जाती है। वार्डन को शक हो जाता है कि विनोद जरूर सिरिंज से नशा करता है। पूछने पर विनोद बात टाल जाता है। आइए अब सुनते हैं आगे।
नमस्ते मालिक।
सूरज सिंह, अरे आओ भाई आओ। मुनीम जी बता रहे थे कल तुम काम पर लेट आए थे, सब ठीक तो है ना?
मालिक, वो कल मैं अपने ही गांव के एक दोस्त के पास गया था, सो देरी हो गई। उसकी तबीयत ठीक नहीं है मालिक।
क्यों, क्या हुआ?
वो स्थिति थोड़ी गंभीर है, इसलिए मिलने जाना जरूरी था।
क्या हुआ है तुम्हारे दोस्त को?
जी, वो डॉक्टर ने बताया है कि वो HIV पॉजिटिव है।
HIV पॉजिटिव?
जी मालिक।
लेकिन तुम्हारा दोस्त HIV पॉजिटिव कैसे हो गया? जरूर उसकी कोई लापरवाही रही होगी।
अब लापरवाही कह लीजिए दिया उसका दुर्भाग्य, मगर ऐसी हालत में उसे मेरे साथ की जरूरत तो है ही ना मालिक। उसे तो उसके मालिक ने नौकरी से भी निकाल दिया है।
ये तो बड़ी बुरी बात है सूरज। एक तो उसके साथ ये घटना हो गई, दूसरा वो नौकरी से भी हाथ धो बैठा। मगर क्या किया जा सकता है, HIV और एड्स को लेकर आज भी हमारे समाज में लोग जागरूक ही नहीं है सूरज।
मालिक, मैं अपने दोस्त जयपाल के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जयपाल की तरह यदि कोई एक आदमी भी मेरी वजह से HIV पॉजिटिव होने से बच गया तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सफल हो गया।
तुम्हारे विचार तो बहुत नेक हैं सूरज, मगर टैक्सी चलाओगे या लोगों को जानकारियाँ दोगे?
मालिक, टैक्सी भी चलाऊंगा और लोगों को जानकारी भी दूंगा।
वो कैसे, ये दोनों काम एक साथ कैसे संभव है? वैसे मेरी मदद चाहिए होगी तो जरूर बताना।
मालिक, ये काम आपकी ही मदद से हो सकता है।
अच्छा, तो बताओ किस प्रकार की मदद चाहिए तुम्हें?
मालिक, मैंने सोचा है कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं टैक्सी में HIV से बचाव से संबंधित संदेश लिखवाकर टैक्सी में बैठने वाली सवारियों को इसके बारे में सावधान कर सकता हूँ।
तुम्हारा ये विचार तो बहुत अच्छा है सूरज, मगर क्या HIV के बारे में तुम्हें पूरी जानकारी है?
मालिक, काफ़ी हद तक तो मैं इसके बारे में जान गया हूँ। रही बात पूरी जानकारी की, तो जिस NGO ने हमारे स्टैंड में HIV की जानकारी देने का कैंप लगाया था, यदि आप उनसे बात कर लें तो मैं वहां जाकर उनसे भी मिल लूंगा।
सही कहा तुमने, ये मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। उस NGO के कार्यकर्ता मिस्टर जितेंद्र का फोन नंबर मेरे पास है। कहाँ रखा है? ये लो, ये उनका विजिटिंग कार्ड है और ये इस पर उनका मोबाइल नंबर लिखा है।
जी,
तुम खुद बात कर लेना और फिर जैसा बन पड़ा करेंगे, ठीक है?
जी ठीक है, धन्यवाद मालिक।
खुश रहो।
किसका फोन है ये? अरे, ये तो विनोद के कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का नंबर है। मोबाइल का यही फायदा है कि फोन किसने किया है फट से पता लग जाता है। हेलो, हाँ प्रिंसिपल साहब, कैसे हैं
आप? विनोद के पिताजी ही बोल रहे हैं ना?
हाँ प्रिंसिपल साहब, भूल गए हमें? पिछली बार आपसे मिलकर गए हैं। बताया भी था कि गांव के प्रधान हैं हम।
वो सब तो ठीक है प्रधान जी, मगर आप जरा अपने बेटे विनोद से ये पूछ लीजिए कि उसका पढ़ने का कोई विचार है भी या नहीं। कॉलेज तो वो आता नहीं है कि हम ही कोई जानकारी ले लें।
कॉलेज नहीं आता, मगर क्यों, कब से?
अब ये तो आप उससे खुद बात करके पूछिए प्रधान जी, पढ़ने में ध्यान ही नहीं है उसका। पिछले एग्जाम भी बस उसने जैसे तैसे ही पास किए हैं। आप उसके पिता हैं, उसे समझाइए, वरना इन हालातों में हमारा उसको कॉलेज में और रखना मुश्किल हो जाएगा प्रधान जी।
आप ऐसा ना कीजिएगा प्रिंसिपल साहब, वो बच्चा है, मैं उससे बात करके उसे समझा लूंगा।
समझाने से क्या होगा प्रधान जी, लड़के का ध्यान भी तो पढ़ाई में होना चाहिए। ये उम्र ही ऐसी होती है प्रधान जी, बच्चे भटक ही जाते हैं। अभी सुनने में आया था कि उसने अपने हॉस्टल के वार्डन से भी लड़ाई की है।
मैं समझाता हूँ उसे प्रिंसिपल साहब, मगर मेरा आपसे अनुरोध है कि उसका नाम कॉलेज से ना काटिएगा।
ठीक है, आप उसे समझाइए कि कॉलेज समय से आए और पढ़ाई करे, तो हमें क्या आपत्ति होगी उससे।
जी जरूर, मैं आज ही बल्कि अभी ही उससे बात करता हूँ।
तो ठीक है प्रधान जी, बस ये समझ लीजिए कि सिर्फ आपकी वजह से मैं उसका नाम नहीं काट रहा, अब आप ही उसे समझाइए।
जी आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं जरूर उसे समझाता हूँ।
जी ठीक है प्रधान जी।
आखिर बात क्या हो गई जो ये विनोद कॉलेज नहीं जा रहा है? इसका प्रिंसिपल तो बिल्कुल बरस ही गया मुझ पर। बताओ, यहाँ गांव में लोग मुझे प्रधान जी कहते नहीं थकते, और इस विनोद की वजह से मुझे उस प्रिंसिपल से सुननी पड़ गई। पता तो करूँ ये विनोद महाशय चाहते क्या है। कहाँ गया? 9 8 6। अरे फोन उठा भी लेना लायक।
हेलो।
हेलो क्या? ये मोबाइल इसीलिए खरीद के दिया है तुझे कि तू अपने बाप का फोन उठाने में भी इतनी देर लगाए?
नाराज क्यों रहे पिताजी, मैं बाथरूम में था।
अच्छा ये सब छोड़, मुझे ये बता कि कॉलेज कब से नहीं गया।
कॉलेज कब से नहीं गया, मतलब मैं तो रोज। लेकिन आप अचानक ये क्यों पूछ रहे हैं?
क्योंकि तेरे कॉलेज से प्रिंसिपल का फोन आया था अभी मेरे पास, बोल रहा था कि तू कई दिन से कॉलेज ही नहीं गया है।
अब क्या बताऊं पिताजी, मैं आपको बताकर परेशान नहीं करना चाहता था कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब है, इसलिए कॉलेज नहीं जा पा रहा था। अब आपको बताता तो घर में माँ चिंता करती।
ये क्या बात हुई कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम घर में बता भी नहीं रहे हो? कम से कम किसी दोस्त के द्वारा कॉलेज में तो बता देते। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी?
जी जी अभी थोड़ा ठीक है, मगर कमजोरी महसूस हो रही है। आप चिंता ना करो, दवाई मैंने ले ली है।
चिंता क्यों ना करूं बेटा, चिंता की तो बात ही है ये। तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए घर आ जाओ, तुम्हारे प्रिंसिपल से मैं बात कर लेता हूँ।
नहीं नहीं पिताजी, आप बेफिक्र रहिए, मैं अब ठीक हूँ, और अभी घर आऊंगा तो इतने दिन जो कॉलेज नहीं गया वो सब पढ़ाई रह जाएगी। मैं फोन पे आपसे बात करता रहूंगा।
ठीक है बेटा, जैसा तुम उचित समझो, और बाकी रही तुम्हारे प्रिंसिपल की बात तो मैं उन्हें समझा लूंगा। अच्छा फोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखना।
जी जी पिताजी।
ठीक है।
अरे भाई शीला, अरे अब आ भी जाओ।
आप लोग खाना शुरू कीजिए ना, मैं बस अभी आई।
सुमन बेटा शुरू करो खाना।
क्यों, क्या हुआ?
अरे खाना क्यों नहीं खा रही हो? भिंडी की सब्जी तो तुम्हें बहुत पसंद है ना, खास तुम्हारे लिए ही तुम्हारी माँ ने भिंडी बनाई है आज।
जी पिताजी।
अच्छा ये बताओ बेटा, तुम्हें इस घर में अकेलापन महसूस नहीं होता? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे साथ खेलने वाला इस घर में कोई होना चाहिए जो तुम्हारे पास रहे, तुमसे बातें करे और खेले? क्यों
जी?
वही तो, अब तुम्हारे लिए इस घर में नया साथी आने वाला है, यानी तुम्हारा छोटा भाई या बहन। तुम्हें क्या चाहिए, भैया या बहन?
मुझसे क्यों पूछ रहे हैं पिताजी, ये आपका और उनका फैसला है, आप खुद ही सोचिए ना आप लोग क्या चाहते हैं।
ये जवाब देने का कौन सा तरीका है सुमन, बड़ों से किस तरह से बात करते हैं सब भूलती जा रही हो तुम।
मैंने क्या गलत कहा है पिताजी, इस घर के फैसले मेरी मर्जी से थोड़े ही होते हैं जो मैं आपको अपनी इच्छा बताऊं।
सुमन शर्म नहीं आती तुम्हें अपने पिता से जबान लड़ाते हुए? स्कूल में जाने का यही परिणाम है क्या?
क्यों पिताजी, अब शीला के कहने पर आप मेरा स्कूल जाना भी बंद करवाना चाहते हैं?
इससे पहले कि मेरा हाथ उठे सुमन, अपना खाना लेकर सीधा अपने कमरे में चली आओ।
क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो, क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? बच्ची है वो, भला कोई बच्चों से ऐसे बात करता है?
तुमको मेरी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पति होने से पहले वो मेरे पिताजी थे जिन्हें तुमने मुझसे छीन लिया।
मगर सुमन, सुमन चली गई, न जाने क्या हो गया है इसे, मुझे देखते ही पता नहीं क्यों आप इसे बाहर हो जाती है।
रहने दो शीला, कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की, आप इसे बाहर नहीं, ये हमारे हाथों से बाहर होती जा रही है। खैर मैं उसे समझा लूंगा, तुम बैठो यहाँ।
नहीं जी, अब मुझसे भी खाना नहीं खाया जाएगा।
मैं अभी खाना खिला दूंगा सुमन को, इस हालत में तुमसे ज्यादा तुम्हारे गर्भ में पल रहे बच्चे को खाना मिलना चाहिए, और इसके लिए तुम्हें खाना तो खाना ही पड़ेगा ना।
आप भी ना, कब आपको गुस्सा आए और कब प्यार, भगवान को भी नहीं पता होगा।
अच्छा ये बताओ, तुम्हें याद तो है ना कि हमें तुम्हारे टेस्ट के लिए जाना है।
हाँ मास्टर साहब याद है, मगर सुमन को ना जाने कैसा लगे।
उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उसे समझा लूंगा।
मौसम बदले तो मत डर जाना गुड़िया रानी, धरती अंबर भीग जाए, नैनों को नहीं भिगोना। रोते रोते
हंसना। जगत हमारे रेडियो धारावाहिक जीवन की राह में तो जीवन वाकई में उलझता जा रहा है।
हाँ प्रेमा, जीवन की यही तो सच्चाई है, और हर व्यक्ति को सच्चाई के साथ जीवन की उलझनों को सुलझाते हुए ही जीवन जीना पड़ता है, और हर कदम पर ध्यान देना होता है कि कदम गलत दिशा की ओर हरगिज न जाए।
सही कहते हो जगत। वैसे आज हमारे कार्यक्रम के अंतिम सेगमेंट में आज तुम श्रोताओं की क्या राय लेने जा रहे हो?
आज क्या किया जाए में हम अपने मुंबई के श्रोताओं से जानेंगे उनकी राय कि वो HIV एड्स के बारे में क्या जानते हैं। आइए सुनते हैं।
HIV एड्स एक बहुत खतरनाक बीमारी है। उससे वायरस शरीर में फैलने से हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और उसका कीटाणु भी बहुत खतरनाक होता है। हमारे खून में जो ओ लाल रक्त कण अपन को ख़त्म करना डालता है।
HIV जो है, एड्स जो है, वो पॉजिटिव कीटाणु है जो शरीर के अंदर जाके इंसान की रोग प्रतिबंधक शक्ति को कमजोर कर देते हैं, और उसके साथ साथ वो आगे जाके उनकी जो ब्लड के अंदर जो सफेद कोशिकाएं हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। उसको ख़त्म करने से इंसान आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाता है और फिर धीरे धीरे जो है वो मर जाता है।
एड्स मानव की नैसर्गिक शक्ति नष्ट करने वाला एक भयानक रोग है। ये तो ना छूने से होता है, ना हाथ मिलाने से होता है, ना किसी से बात करने से। इसके रोकने के लिए अनैतिक संबंध को टालना है। जिसे एड्स की बीमारी है उसकी सुई नहीं वापरनी चाहिए। एड्स वालों का खून गलती से भी किसी को नहीं देना चाहिए।
दोस्तों ऐसे ही जानकारियों के नए नए क्रम को लेकर हर हफ्ते हम आपके बीच आते रहेंगे, और जाते जाते हम आपको फिर बता दें कि आइडियो सिंह मीडिया कंबाइन द्वारा निर्मित इस कार्यक्रम का संचालन अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से हो रहा है, और साथ ही हम आभारी हैं अपने सहयोगियों हेवलवानी सामुदायिक रेडियो और मंदाकिनी की आवाज, और साथ ही दिल्ली मुंबई के हमारे सभी सामुदायिक संवाददाताओं के।
और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रेमा और जगत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।